ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। सरकार ने पशुधन क्षेत्र में वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस मिशन का कार्यान्वयन 1,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त परिव्यय के साथ किया जा रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता को काफी प्रोत्साहन मिलेगा, साथ ही किसानों की आय में वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने डेयरी विकास के लिए संशोधित राष्ट्रीय कार्यक्रम को भी स्वीकृति दी। इसके अलावा सरकार ने कम मूल्य के भीम यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना में छोटे व्यापारियों को 2,000 रूपये तक के लेनदेन के लिए प्रति लेनदेन पर 0.15% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित उद्यम उत्सव में भाग लेंगी। इस कार्यक्रम का आयोजन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय कर रहा है, जो 30 मार्च तक चलेगा। उद्यम उत्सव का उद्देश्य देश की जीवंत विरासत को नागरिकों के करीब लाकर एमएसएमई को सशक्त बनाना और प्रोत्साहित करना है। महाराष्ट्र सरकार ने कौशल विकास और श्रम शक्ति के क्षेत्र में जर्मनी के बाडेन वुर्टेम्बर्ग राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। महाराष्ट्र कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने ये बात बताई कि इस समझौते से विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और जर्मन राज्य बाडेन वुर्टेम्बर्ग में कौशल पूर्ण नौकरियों के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। बाडेन वुर्टेम्बर्ग से शिक्षा विशेषज्ञों का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल 16 से 22 मार्च तक महाराष्ट्र के दौरे पर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाटेक नामक संगठन स्थापित करने का निर्देश दिया है, जो राज्य की योजना प्रक्रिया को गति देगा और $1 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने विकास और योजना प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भूस्थानिक प्रौद्योगिकी प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से कल आयोजित समीक्षा बैठक की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर सरकार ने आकस्मिक, सामयिक और अन्य अस्थायी श्रमिकों को नियमित करने को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे और इसमें वित्त, योजना, कानून और सामान्य प्रशासन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। समिति के 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की भी उम्मीद है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। इस वर्ष पंजीकरण का प्रमाणीकरण आधार कार्ड से होगा और पंजीकरण के दौरान श्रद्धालुओं को अपना आधार कार्ड विवरण देना होगा। कुल पंजीकरणों में से 60% पंजीकरण ऑनलाइन होंगे, जबकि 40% ऑफलाइन किए जाएंगे, ताकि तीर्थयात्रियों को कोई परेशानी न हो। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश सहित यात्रा मार्गों पर पंजीकरण केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तीर्थयात्री registrationandtouristcare.uk.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। बिहार में आज अंतर्राष्ट्रीय सेपक टकराव महासंघ विश्व कप 2025 की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 25 मार्च तक चलने वाले इस आयोजन का आज शाम उद्घाटन करेंगे। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शकरन ने बताया कि ये पहली बार है जब बिहार सेपक विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आज शुभारंभ नई दिल्ली में होगा। इसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1300 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। ये जमीनी स्तर के खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया पहल का एक हिस्सा है, जो 27 मार्च तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉ करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित किया गया है। वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म भारत में ड्यूशर फुटबॉल बंड DFB पोकल सेमीफाइनल और ग्रैंड फिनाले का सीधा प्रसारण करेगा। प्रसार भारती और DFB जर्मनी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत और जर्मनी के बीच फुटबॉल संबंधों को मजबूती मिलेगी। समझौते के अंतर्गत एक अंडर-17 प्रतिभा खोज टूर्नामेंट का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें 20 युवा भारतीय खिलाड़ियों को जर्मनी में प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि DFB के साथ सहयोग से भारतीय दर्शकों को न केवल बड़े स्तर के फुटबॉल मैच देखने का अवसर मिलेगा, बल्कि युवा फुटबॉलरों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।